ने हमेशा इन तीनों चीजों को सामने रखते हुए आयात में गुफ्तगू की है, अल्लाह ने कलाम किया है। मिसाल के तौर पर आपने एक ही जुमला बोलना हो अपनी अम्मी से और वही जुमला बोलना हो अपनी बेटी से, आप एक ही जैसे अल्फाज इस्तेमाल करती हैं। फर्ज करें आपकी अम्मी सामने खड़ी हैं, आपने रोजा खोला है अभी 20-25 मिनट पहले, आप सोफे पर बैठी हैं, आप अपनी बेटी से कहती हैं, बेटी आती है कहती है बेटा मुझे एक ग्लास पानी ला दो। अब आपकी अम्मी आई सामने से, आपका उठने का दिल नहीं कर रहा, क्या अम्मी से पानी मांगा जा सकता है? नहीं। तो आप लोग तो अम्मा ही है, भाग भाग के अपने बच्चों को पिलाती हैं, वो तो वहीं कमरे से आवाज लगाते हैं, अम्मा ट्रे ला दें, अम्मा चावल ला दें, अम्मा बिरयानी ला दें, अम्मा जी मेरे आका ट्रे लेके हाजिर। ये क्या बात हुई? अम्मा से पानी मांगा जा सकता है ऑब्वियसली, अगर अम्मी की तबीयत खराब है। अब ये नहीं है कि अम्मी बुखार में बेचारी जो है वो फूक रही है और बिस्तर पर लेटी है और बच्चा आवाज लगा रहा है, अम्मा बस खाना तो आप ही बना के देंगे मुझे, इसकी बात नहीं हो रही। बट अम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है, हेल्दी है, सामने से गुजर रही है, आप उनसे पानी मांग सकते हैं। बट द पॉइंट इज, बेटी से आपने कहा बेटा मुझे पानी ला दो, अम्मी से कहेंगी अम्मी पानी ला दो, अम्मी से कहेंगी प्लीज अम्मा पानी ला देंगी एक ग्लास। बदल गए ना अल्फाज, आपका सब्सटेंस जो आप कहना चाह रही थी वो तो वही था, बट आपने अल्फाज का रद्दो बदल कर दिया। अगर आप नहीं करती, बाज लोग होते हैं ऐसे, बाज लोग कहते हैं मैं तो सच्ची बात करती हूँ, मुझे इससे परवाह नहीं होती सामने कौन बैठा है। बिल्कुल ना मुनासिब, आपको बयान की क्वालिटी अल्लाह ने दी है, आपने उसको हार्नेस नहीं किया। आपको सच बोलना जरूर है, लेकिन सच बोलते हुए आपको ये ख्याल रखना है कि आप किसको बात कर रही हैं, आपके सामने सुनने वाला कौन है, आप किसको एड्रेस कर रही हैं। जिस टोन में आप अपने बेटे से बात करती हैं, इस टोन में आप अपने वालिद और अपने शौहर से बात कर सकती हैं? हरगिज नहीं। बाज़ औक़ात हम ख़वातीन अपने शौहरों से वैसे ऐसी बात कर रही होती हैं, सुनने वाला समझता है पता नहीं बेटे की बात कर रही है, ड्राइवर की बात कर रही है कि शौहर की बात कर रहे हैं। नहीं, वो आया था, मतलब कोई हलाल हराम की बात नहीं कर रही है इस वक्त, आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वेल एंड गुड, बट एक फर्क पता चलना चाहिए ना। नहीं, वो आया था, आप पूछे कौन आया था, मैं अपने हस्बैंड की बात कर रही हूँ। सही, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, चलिए ये तो मैंने बाय द वे कह दिया, इट्स अप टू यू, आपका अपना अपने हस्बैंड के साथ मामला है। पर्सनली मैंने अपने अम्मा अब्बा से ये सीखा है अपने खानदान में कि शोहर को आप कह के बात करनी चाहिए, मतलब तुम कह के, ये अब ट्रेंड शुरू हो गया। आप सोचें आपकी नानी आपके नाना को कहती है तुम इधर आओ, आप और मैं उसको रजिस्टर नहीं कर सकते कि नानी नाना से कह रही है तुम इधर आओ, नहीं कर सकते ना, तो हमें कौन से सुरखाब के पर लग गए। सोचने की बात है, इट्स जस्ट द खूबसूरती ऑफ द रिलेशनशिप, इसमें कोई ब्लैक एंड व्हाइट रूल्स और रेगुलेशंस की बात नहीं हो रही है, लेकिन वो चीजें हैं जो आपको बताती हैं कि आप किस वैल्यू स्ट्रक्चर, किस फैमिली बैकग्राउंड के साथ चल रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपका बेटा है और वो नमाज नहीं पढ़ता या डंडी मारता है, बार बार छोड़ देता है, आप किस तरह से उसको बार बार जुमले बोलती हैं, कितनी मर्तबा बोलती हैं, कब मोहब्बत से बोलती हैं, कब डांट कर बोलती हैं, कब नसीहत के अंदाज में बोलती हैं। सही, इसके मुकाबले में आपके हस्बैंड हैं जो इसी सिनेरियो पर हैं कि कभी कभी नमाज पढ़ते हैं, कभी कभी नहीं पढ़ते। जिस टोन में, जिन अल्फाज के सिलेक्शन में, जिन जुमलों में आपने अपने बेटे से बात की थी, एज इट इज आप अपने हस्बैंड से भी बात कर सकती हैं, सच बताइएगा। नहीं कर सकते, करना नहीं चाहिए, कर भी नहीं सकते और करना भी नहीं चाहिए, वो पुट ऑफ हो जाएंगे। हर इंसान का अपना मुकाम होता है और हमें ये कुरान चीज सिखाता है। कुरान ने सहाबा से भी बात की है, कुरान ने मुशरिकीन से भी बात की है, कुरान ने नाफरमान लोगों से भी बात की है, कुरान ने बाज औकात सटल अंदाज में मुनाफिकीन का जिक्र भी किया है, कुरान ने अहले किताब को भी एड्रेस किया है। जो लोग कुरान की जुबान को गहराई में समझते हैं, उनको अल्फाज के सिलेक्शन से अंदाजा हो जाता है कि कहाँ अल्लाह ताला ने बहुत ही मोहब्बत भरे अल्फाज से जुमला कंस्ट्रक्ट किया है, कहाँ अल्लाह ताला की तरफ से कोई धमकी है, कहाँ अल्लाह की तरफ से कोई चैलेंज है, किस जगह पर अल्लाह का गजब जो है वो अल्फाज के पीछे झलक रहा है। तो ये वो अंदाज हैं जो आपको और मुझे कुरान से पता चलते हैं कि किससे बात की जा रही है, दैट काउंट्स. इस जगह पर ये जो आयत रिपीट हुई है, आखिरी बात, आप अपने टीनेज बच्चे को नमाज पढ़ने के लिए जिंदगी में एक दफा कह दें काफी है? नहीं, दिन में कितनी मरतबा कहना होता है? 5 तो नमाजें होती हैं, सो हर नमाज के लिए कम से कम 5 दफा तो कहना होता होगा ना, बार बार कहना होता है. यहां पर ये आयत जिस तरह से इसको लाया गया है, आपको मैंने शुरू में ही बता दिया था कि स्ट्रॉन्ग ओपिनियन यही है कि सूरत रहमान मक्की सूरत है. अब यहां बात ये आई गई है तो मैं आपको मेंशन कर दूं, बास आपको तफसीर के अंदर सूरत रहमान मदनी मिलेगी, लेकिन ये किसी सूरत ऐसी और भी सूरतें हैं जिसके ऊपर इख्तलाफ है कि वो मदनी है या मक्की है. देखा यह जाता है कि आप किन तफसीर को फॉलो कर रहे हैं और उन्होंने मासिस के अंदर उस सूरत को किस तरह से लिया है. मगर फिर भी मैंने कोशिश हमेशा की है कि जहां पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसको ऑडियंस के सामने रख दिया जाए. सूरत रहमान उन चंद सूरतों में से सूरत है जिसके लिए कहा जाता है कि बास स्कॉलर्स कहते हैं कि ये मदनी है, बास कहते हैं ये मक्की है. अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु अन, इकरमा बिन अबी जहल और मुफस्सिर कुरान कतादा, इनके मुताबिक ये मदनी सूरत है. लेकिन आपको कई ऑथेंटिक नरेशंस मिलती हैं. अब इनके मुताबिक ये मदनी किस तरह से है, इसलिए इनका कहना है कि कुछ चंक इसका मक्की का है और मेजर चंक इसका मदनी है, वल्लाहु आलम. दूसरा ओपिनियन जो है वो ये है कि स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मौजूद हैं कि ये मक्की सूरत है. एक आपको मैंने हदीस सुनाई थी जो लैलतुल जिन के बारे में थी, बहुत से मुफस्सरीन ने उसको सामने रखा है और कहा है कि ये मक्की सूरत है. मुसनद इमाम अहमद में अस्मा बिनते अबी बकर से जो नरेशन आती है उसका मफहूम ये आता है कि उन्होंने मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरू के मक्की दौर में हरम में नमाज पढ़ते हुए देखा सुना, और आप उस वक्त ये आयत तिलावत कर रहे थे, फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज्जिबान. तिर्मिजी मुस्तदरक हाकिम में जाबिर बिन अब्दुल्ला से आपको ये तमाम रिवायात जो हैं मिलती हैं. सो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, ज्यादातर स्कॉलर्स यही कहते हैं कि ये मक्की सूरत है. अगर कहीं आपको मदनी सूरत लिखा हुआ मिल जाए तो कोई उस पर जो है वो हाइपर वेंटिलेट होने की जरूरत नहीं है, ये मदनी कैसे हो गई, ये तो मक्की थी, ये तो मिस प्रिंट है, या ये मिस प्रिंट है या हमें गलत बताया. ना वो मिस प्रिंट है ना आपको गलत बताया है. दीन की वुसअत बहुत अहम है समझना, इसलिए मैंने Q&A में बताया था कि उस वक्त लोगों से बात करें जब आपके पास इल्म इतना हो कि आप गिरफ्त रखते हो उस टॉपिक के ऊपर, उस सब्जेक्ट के ऊपर. तो जब ये स्कॉलर्स कहते हैं कि ये मक्की सूरत है, तो उसके लिए वो कहते हैं कि बिल्कुल जैसे किसी नौजवान को एक नेकी की तरफ लाने के लिए उसको बार बार मोटिवेट करना होता है, इसी तरह से बास दफा इंसान स्टबर्न होते हैं, जिनके ऊपर एक अच्छी बात, दो अच्छी बातें, 10 अच्छी बातें असर नहीं कर रही होती हैं, तो उनको जगाने के लिए बात को रिपीट किया जाता है. यहां ऑडियंस मक्की दौर के हवाले से कुरैश मक्का थे और कुरैश मक्का बड़ी बड़ी निशानियों को झुटला रहे थे, कुरैश मक्का बड़ी बड़ी नेमतों को झुटला रहे थे. अल्लाह ने कुरैश को, अरब को सिलेक्ट किया था कुरान नाजिल करने के लिए. कुरान आया तमाम इंसानों के लिए है, लेकिन कुरान के अव्वलीन मुखातिब अरब हैं, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब थे, उन्हीं के दरमियान में थे. तो ये कुरैश कुरान की नेमत को झुटला रहे थे, ये कुरैश अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब की पर्सनैलिटी को झुटला रहे थे. ये कुरैश जो थे इनको अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दी थी कि इस्लाम का पौधा मक्का में लगाया गया था और ये इस नेमत को रिजेक्ट कर रहे थे. कुरैश हरम की इतनी बड़ी नेमत को झुटला रहे थे कि अल्लाह ताला ने अपने घर के लिए दुनिया में जो वाहिद मुकाम सेलेक्ट किया था वो इसी मक्का मुअज्जमा की जमीन पर था. कुरैश इस नेमत को झुटला रहे थे कि अल्लाह ताला ने इस हरम की वजह से इनको पूरे अरब में पुरअमन रखा हुआ था. पूरे अरब में जंगें होती थी, हरम की हुदूद में जंग की इजाजत नहीं थी. पूरे अरब में काफले लूट लिए जाते थे, कुरैश के काफले सीरिया तक जाते थे, और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो कुरैश के काफले पर हमला करे, इसलिए कि कुरैश हरम काबा के कस्टोडियंस थे। तो ये सारी अल्लाह की वो नेमतें हैं जो इन लोगों के पास थीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत का दावा किया और इन लोगों ने अपनी स्टबननेस में इन तमाम नेमतों को झुटलाया, शुक्र से दूर हो गए। तो मुफस्सरीन कहते हैं इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको जगाने के लिए इस आयत से हैमरिंग की है। दिस इज अ लिटरल हैमरिंग, अगर आप इस आयत को समझ जाएं कि अल्लाह ताला अपनी नेमतें गिनवाने के बाद बार बार ये बात मेंशन कर रहा है कि तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। तो अल्लाह ताला ने एक वजह अपने बंदों के जरिए हम तक ये पहुंचाई कि इस आयत को रिपीट करने का मकसद इंसान के दिल से वो सख्त क्रस्ट तोड़ना है जो नाशुक्री की वजह से, जो गफलत की वजह से, जो जाहिलियत की वजह से उसके दिल के इर्द गिर्द आ जाता है। यहां तक बात समझ आ गई? अब आ जाएं रब्बी कुमा पर। रब्बी कुमा में कुमा इज अ प्रोनाउन, प्रोनाउन तस्निया का है, ड्यूल का है। इंसान तो पहले मेंशन कर दिए गए, लेकिन दूसरी स्पीशी कौन सी है उसको अभी तक सूरत में मेंशन नहीं किया गया। मुफस्सरीन के मुताबिक इस सूरत के अव्वलीन मुखातिब दो हैं, शान नजूल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। नंबर वन कुरैश के लोग हैं जो नेमतों को झुटला रहे थे। शान नजूल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो नंबर वन में स्पेसिफिकली कुरैश आएंगे, और अगर इन जनरल देखा जाएगा तो नंबर वन में तमाम इंसान आएंगे। ठीक है, तो शान नजूल के पॉइंट ऑफ व्यू से अव्वलीन मुखातिब में पहले वो लोग थे जो कुरैश के लोग थे और नेमतों को झुटला रहे थे, और दूसरे मुखातिब वो थे जो कि इन कुरैश के हिडन फॉलोअर्स थे, या आप कह लीजिए इनके इनविजिबल हेल्पर्स थे, शयातीन, जो इनको विस्पर करते थे, जो इनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिनाय करने की तरफ मोटिवेट करते थे, जो इनको इस्लाम की तालीमात को दिल में उतरने से बैरियर बना देते थे। और मुफस्सरीन अगर आप तफसीर पढ़ेंगे खासतौर पे क्लासिकल स्कॉलर्स की, तो आपको इसके ऊपर कई डिस्कशंस मिलेंगे कि ये कुमा क्या है। स्ट्रांग ओपिनियन डेफिनेटली, और जो आयत के जो रेफरेंसेस हैं सूरह रहमान के जिस तरफ जाते हैं वो यही है कि ये कुमा में एक स्पीशी इंसान है, दूसरी स्पीशी जिन है। लेकिन बास तफासीर में मेंशन किया गया है, और जिन क्यों है, एक तो रेफरेंस आपको बता दिया, एक तो आप जो आयत नंबर 14 आएगी उसमें देखेंगी कि आगे जिन्नात का जिक्र आएगा, और दूसरा जो शान नजूल में वाकया है अहादीस का लैलतुल जिन से, उसमें ज्यादातर स्ट्रांग ओपिनियन अमंग द स्कॉलर्स यही रहा है कि कुमा में इंसान और जिन मुराद हैं। फिर भी आपको बताने के लिए, जस्ट फॉर द रेफरेंस, बास स्कॉलर्स ने कहा कि कुमा के अंदर मर्द और औरत भी हो सकते हैं, यानी मर्द और औरतों को एड्रेस किया गया है। बाज ने कहा कि कुमा में मुस्लिम और नॉन मुस्लिम्स भी हो सकते हैं, और तीसरा ओपिनियन बास स्कॉलर्स का यह है कि अरबी जुबान में ड्यूअलिटी को मेंशन किया जाता है जस्ट फॉर द एम्फेसिस, तस्निया को लाया जाता है, एंड इट्स अ उसूल इन अरबी जुबान। जरूरी नहीं होता जब भी आप ड्यूल देखें, तस्निया देखें, तो वहां दो लोग मुराद हो। बाज मुकामात ऐसे, जैसे कुरान में सूरत काफ में आता है, सूरत काफ की आयत नंबर 24 में आता है, व अल्किया फी जहन्नम कुल्ल कफ्फार अनीद, हर हक के दुश्मन को जहन्नुम में डाल दो। अल्किया वहां पर ड्यूल आया है, लेकिन उससे मुराद दो नहीं है, वो सिर्फ एम्फेसिस के लिए आया है। ठीक है, तो ड्यूल आता है अरबिक लैंग्वेज में, एक रीजन क्या बताई स्कॉलर्स ने, सिर्फ एम्फेसिस के लिए। तो टोटल चार राय आपको मुख्तलिफ तफासीर से मिलती हैं, दिस इज द सिनॉप्सिस। बास स्कॉलर्स कहते हैं कुमा से मुराद मर्द और औरत हैं, बास स्कॉलर्स कहते हैं कुमा से मुराद मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स हैं, बास कहते हैं कि तीसरा ओपिनियन ये है कि ये ड्यूअलिटी जो है सिर्फ एम्फेटिक वे में आई है, ताकीद के लिए आई है, इसका मतलब यहाँ तस्निया नहीं है। और स्ट्रॉन्गेस्ट ओपिनियन अमंग द स्कॉलर्स, अमंग द मुफस्सिरून, ये है कि कुमा नंबर 4 इंसान और जिन इन दो के लिए आया है। तो हम इंशाल्लाह उसी को फॉलो करेंगे जो हमारे पास आ गया कि ये जिनों और इंसानों की बात है। जिन जिनको आग से पैदा किया गया, इंसानों से बहुत पहले पैदा किया गया, और क्या फरिश्ते जिनों से पहले आए थे या बाद में आए थे? फरिश्ते उससे भी पुरानी अल्लाह की मखलूक हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों से पहले जिनों को पैदा किया, जिनों से पहले फरिश्तों को पैदा किया, और ये जिन जो हैं इनको आग से पैदा किया गया है। इंसान को जब जमीन का खलीफा बनाया गया, उससे पहले जिन इस जमीन के ऊपर हैबिटेंट थे, ये जिन यहां रहते थे, जिन इस जमीन के ऊपर खलीफा बनाए गए थे।